हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 15 टेक्स्ट नंबर 8। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए प्रेम, श्रद्धा और भाव के साथ मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजनाशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहकर्ण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सूत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। श्लोक नंबर 6 में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, के जीव जो है वो इस जितने भी इस बद्ध जगत में जीव हैं वो मेरे अंश हैं और वो सनातन है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान के अंश हैं और सनातन हैं, फिर वो इस संसार में क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, तो किस तरह से उनका यहाँ संसार में आना हुआ है और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में किस तरह से बदल रहे हैं, इसका आंसर भगवान श्री कृष्ण आज चैप्टर नंबर 15 टेक्स्ट नंबर 8 में दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः ग्रहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। शरीरम यदवाप्नोति, शरीरम मतलब शरीर को, यत मतलब जिस, आप्नोति मतलब प्राप्त करता, यानी कि संसार में जिस शरीर को प्राप्त करता है, यच जिस, चा च मतलब तथा, अपि मतलब भी, उत्क्रमति यानी त्यागता है, यानी जिस शरीर को प्राप्त कर रहा है और जिस शरीर को त्यागता है, कौन, ईश्वर यानी शरीर का जो स्वामी है वो जिस शरीर को प्राप्त कर रहा है और जिसको त्यागता है, गृहीत यानी ग्रहण करके एतानी इस सब को यानी जिसको ग्रहण कर रहा है, त्याग रहा है या फिर प्राप्त कर रहा है उसको ग्रहण करके संयाति चला जाता है। किस तरह चला जाता है? वायुर्गंधानी, वायुर्गंधानी मतलब वायु गंध यानी महक को, अब जहां से वायु गुजरती है वहां से हवा को, हवा गंध को यानी सुगंध हो या दुर्गंध हो उसको कैसे, एवा वायुर्गंधानी वाशयात, इवाशयात मतलब स्रोत से, जहां से भी गुजरती है वहां से वायु सुगंध या दुर्गंध को जिस तरह अपने साथ लेकर चली जाती है उसी तरह से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। यानी भगवान कहते हैं इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में इसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी या दुर्गंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। बस ऐसा ही, एक बार जैसे संसार में आ गया और फिर जैसे वायु गुजरती है अपने साथ कैसे सुगंध और दुर्गंध को लेकर जाती है, उसी तरह से जो आत्मा है वो मन बुद्धि अहंकार से घिरी हुई है और उसी तरह से वो दूसरे अपने जितने भी मन बुद्धि अहंकार में जितने भी विचार हैं उसके अनुरूप उसे दूसरा शरीर मिल जाता है और वो भी उसी तरह से दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। कहाँ कहा गया? देखो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, यच्चाप्युत क्रामति ईश्वर, ये ईश्वर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है शरीर जो, शरीरधारी जो है वो अपनी मर्जी उसकी इच्छाओं के अनुसार, क्योंकि वो स्वामी है अपने शरीर का नियामक है, यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्च योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था 14.18 में पढ़ा था कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठसि राजसा जनन्य गुण वित्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा, सतोगुणी में व्यक्ति उच्च लोकों में ऊपर लोक की जाता है, रजोगुण में इसी पृथ्वी लोक पर चला रहता है और बहुत ही घृणित कर्म जो तमोगुण है उनमें नीचे लोकों में जाता है। तो ये इसी बात कृष्ण प्रभुपाद जी बोलते उसकी मर्जी है कि वो कौन सा गुण विकसित कर रहा है और किधर जा रहा है, चाहे तो ऊपर के लोकों में जाए चाहे तो निम्न योनियों में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, उसकी अपनी मर्जी चलती है, उसके पास फ्री विल है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है, उस स्वतंत्रता के ऊपर कि आप उस स्वतंत्रता को किस तरह से यूज करते हो। मिस यूज करोगे तो फिर निम्न योनि में जाना पड़ेगा, अगर उसको सही तरीके से यूज करोगे तो आपको उच्च योनि में भेज दिया जाएगा। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। इस चीज को भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 8 में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर तरीके से पहले ही बता चुके हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यंत्र संशय, यानी अंतकाल में जैसा भी, और 6 में बहुत अच्छे तरीके से कहा यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वायति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, यानी कि जो जो भाव हमारे मरते समय होंगे और उसी शरीर को हम प्राप्त करेंगे। इसके तात्पर्य में श्लोक नंबर 5 के तात्पर्य में 4 लाइनें छोड़ के लाइन नंबर 5 से श्री प्रभुपाद जी इसका बहुत अच्छे तरीके से विख्यात करते हैं कि श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से हो ही नहीं सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम अंत में जाएंगे तो अंत में भगवान को याद कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही श्री कृष्ण का स्मरण का अभ्यास करें। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछित है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है, क्योंकि अंत जन्म लाभो परोपुंसा अंते नारायण स्मृति। वेद कहता है कि आपके जीवन का लाभ उसी वक्त है जब आपको जीवन के अंत में भगवान की याद आ जाए। और श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा संभव ही नहीं है कि पूरी जिंदगी में आपने दुनियावी काम किए हो और भौतिक इच्छाएं की हो और अंत में आपको भगवान याद आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यदि जीवन के अंत में सफलता वांछित है तो कृष्ण का स्मरण शुरू से ही करना पड़ेगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवता, यह आपको छोटी उम्र से ही भगवान को याद करना शुरू करना पड़ेगा। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर अंत में आप भगवान को याद करोगे तो ही भगवान को प्राप्त करोगे, और इसकी विधि शुरू से ही आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। और जो हमें स्वतंत्रता है उसका अगर सदुपयोग करना है तो यही है कि हम अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में परिवर्तित कर लें, और वह उस पर निर्भर मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुहा में स्थित रखता है तो उसे देवताओं का स्वरूप प्राप्त होता है, और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में या कृष्ण लोक में जाता है जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण ने हमें कहा है कि आपको आना है इस संसार में, जब आप वृक्ष में फंस गए हो तो आपको क्या करना है, ऐसी जगह की खोज करनी है जहाँ से वापस ना आना पड़े। और भगवान ने साफ साफ बताया कि यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परम मम, और वो जगह जहाँ से वापस आना नहीं पड़ता है दुखों भरी दुनिया में वो तो मेरा धाम है, और उसमें आप कैसे जा सकते हो। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने कहा और यदि वह कृष्ण भावना में होता है तो ही वो आध्यात्मिक जगत या कृष्ण लोक में जा सकता है जहाँ कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और वहां से वापस आना नहीं पड़ेगा। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि शरीर खत्म हो जाएगा, किसने देखा बाद में तो कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं खाली आप ये सोच लो कि कुछ नहीं रहता तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं रहता। अगर कोई ये सोचे कि अगर रात हो जाती है तो सब खत्म होता है, कभी सूर्य उदय नहीं होता है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि वाकई में सूर्य उदय नहीं होगा। अगर इसी तरह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। यानी श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जिस तरह भगवान ने कहा है कि वायु गंध के स्थान से गंध को लेकर चली जाती है, उसी तरह से आप अपने विचारों के द्वारा दूसरे शरीर में परिवर्तन होते हैं, और ये वर्तमान शरीर यानी जो अभी प्रेजेंट शरीर है आपका और जो वर्तमान कार्यकलाप है यानी प्रेजेंट शरीर में रहकर आप जो जो कार्य करते हो वही दूसरे शरीर का आधार बनता है, उसी के अनुसार आपको दूसरा शरीर प्राप्त होता है। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है जैसे जैसे आपने कर्म किए। अब इसका मतलब ये भी है कि अभी जैसे हम कार्य कर रहे हैं अंत में हमारी वैसी ही स्मृति बनी रहेगी, लेकिन जरूरी नहीं है, आगे जाकर हो सकता है कि हमें शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो और हम अपनी देहात्म बुद्धि से बाहर निकल कर ईश्वर प्राप्ति के लिए यत्न करें और महामंत्र का यदि हम जप करेंगे तो अंत में हमें भगवान का सानिध्य भगवान का रूप भगवान की याद आ जाएगी, और शरीर त्यागते समय अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमें वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन इस समय जब हम जीवित हैं तो ब्रह्मा जी को जो ब्रह्मा जी हमें दूसरा शरीर देंगे उन्हें भी पता नहीं है कि हमें कौन सा शरीर मिलेगा। ये सारा का सारा हमारी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है कि जैसे हम अपने स्वतंत्रता का फायदा उठाएंगे, जैसा उपयोग करेंगे, अपने शरीर की कार्यकलाप जैसे बनाए रखेंगे, जैसी स्मृति बनाएंगे, जिस गुण में हम होंगे उसी गुण के अनुसार हमें दूसरा शरीर प्राप्त होगा। यहाँ ये कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर को अगले शरीर का बीज वहन करता है, यानी जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर पता है ना, जैसे हमारे शरीर के अंदर दो हिस्से हैं, एक स्थूल शरीर है और दूसरा सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर में क्या होते हैं, पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, मन बुद्धि अहंकार। तो यहाँ ये कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, जैसे मन बुद्धि अहंकार, जैसा हमारा मन होगा, जैसे विचार होंगे, तो दूसरा शरीर हमें उसी तरह से प्राप्त होगा। अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है और इसी तरह से दूसरा शरीर बनता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। जैसे पहले श्लोक में हमने पढ़ा था ना, श्लोक नंबर 6 में प्रकृति स्थानी कर्षति, तो कर्षति यानी संघर्ष, और संघर्ष कौन सा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलना, संघर्ष कर रहे हैं, कभी दूसरे शरीर में जा रहे हैं, कभी जैसे हम लोगों ने 84 लेख योनियां पढ़ी हैं, तो जैसे जैसे विचार होंगे भगवान हमें ऐसा ऐसा देह प्राप्त करेंगे, और उस देह में भी जैसे हमारे यहाँ पर संस्कार और विचार होंगे उसी तरह, जैसे अगर कुत्ते का शरीर मिलना है तो अगर हमने यहाँ पर रहकर ऐसी हरकतें की है, मतलब पशु योनियां जैसे तमोगुण में की है, लेकिन साथ साथ में कुछ और भी किया है, दान पुण्य भी थोड़ा, तो फिर कुत्ता भी बनेंगे तो फिर अच्छे घर का कुत्ता बनेंगे। इसी तरह से देखो भगवान के पास हर वैरायटी है, जैसी जैसी आपकी बुद्धि है ऐसा ऐसा आपको शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया, यानी जो ये प्रक्रिया है, ये जो काम है, ये जो एक दूसरे शरीर से दूसरे शरीर में जाने की जो विधि है, तथा शरीर में रहते हुए जो हम कार्य करते हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उसको कर्षति यानी जीवन संघर्ष कहते हैं। और इस संसार में रहकर संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि इस संसार को पवर्ग कहते हैं, जिसमें मनुष्य मात्र, मनुष्य ही नहीं जीव मात्र को अपने जीने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। ऐसा नीति शास्त्र कहते हैं, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा, यानी कि अगर आप सिंह भी बन जाओ, अगर हम शेर भी बन जाएंगे, जैसे शेर तो जंगल का राजा होता है, तो दूसरे प्राणी ये नहीं बोलेंगे कि चलो ठीक है हमारा राजा भी भूखा होगा, हम उनके मुख में प्रवेश कर लेते हैं तो फिर उनको भोजन मिल जाएगा। उससे शेर को भी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हिरण का शिकार करना पड़ता है, भागना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक उसे कोई शिकार नहीं मिलता है तो भूखा रहना पड़ता है। तो इस संसार में जो भी संसार में आया है उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने इस जीवन को चलाने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। सुबह से लेकर रात तक जीव संघर्ष कर रहा है सिर्फ जीवन को पालने के लिए। इस जीवन के जाने के, इस शरीर के खत्म होने के बाद वो संघर्ष में आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसका कोई लाभ नहीं। लाभ क्या है, बस यहाँ तक जितने दिन तक जियोगे उतने दिन की सामग्री आप यूज जो कर रहे हो, जो बैंक बैलेंस है ना वो काम में नहीं आएगा, जो आपने यूज किया समझो वो यूज किया, बाकी तो दूसरों के लिए छोड़ के गए। लेकिन जो संघर्ष हम कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक जीने के लिए, बस वही संघर्ष जो है उसको कर्षति कहते हैं। और वही संघर्ष जो है जिस तरीके से किया गया है, हमने जिस तरीके से जिया है उसी के अनुसार हमें दूसरा शरीर प्राप्त होगा। इस यही हमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा शरीरम यदा वापनोति यच्चाप्युत कामतीश्वरा, यानी जो शरीरधारी है वो इस शरीर में रहकर जो जो कार्य कर रहा है और देहात्म बुद्धि से एक शरीर में दूसरे शरीर में ले जाता है, किस तरह, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को, यानी जहां से गुजरती है वहां पर जो सुगंध है और दुर्गंध है वो अनिवार्य है, उसको रोका नहीं जा सकता। वायु को कोई बोल नहीं सकता कि आप यहां से ये तो बदबू है आप लेकर नहीं जाओ, उसका स्वभाव है लेकर जाएगा। उसी तरह से सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार जो है वो अपने विचारों से एक दूसरे नए शरीर का निर्माण करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।